नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नॉट थ्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। रियल टाइम रेंडरिंग थर्ड एडिशन थॉमस अकिनी ने मोलर, एरिक हेंस और नैडी हॉफमैन की कंप्यूटर ग्राफिक्स पर एक व्यापक तकनीकी संदर्भ पुस्तक है। इसका विषय यह है कि त्रिआयामी दृश्य को इतनी तेजी से कैसे बनाया जाए कि उपयोगकर्ता उसे तत्काल प्रतिक्रिया देने वाले खेल सिमुलेशन विजुअलाइजेशन या इंटरैक्टिव अनुप्रयोग के रूप में अनुभव करे। पुस्तक केवल चित्र को सुंदर बनाने की विधियां नहीं बताती, बल्कि ज्यामिति, कैमरा प्रोजेक्शन, प्रकाश, दृश्यता, टेक्सचर और ग्राफिक्स हार्डवेयर के बीच संबंध स्पष्ट करती है। तीसरा संस्करण उस दौर के प्रोग्रामेबल ग्राफिक्स प्रोसेसर और आधुनिक गेम रेंडरिंग की बुनियादी सोच को व्यवस्थित रूप देता है। इसका उद्देश्य पाठक को तैयार रेसिपी देना नहीं, बल्कि तकनीकों के चयन के पीछे लागत, गुणवत्ता और सीमाओं को समझाना है। इसलिए यह गणितीय आधार से शुरू होकर रेंडरिंग पाइपलाइन, शेडिंग, छाया, पारदर्शिता और वैश्विक प्रकाश जैसे विषयों तक जाता है। विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रमों में इसके संदर्भ उपयोग से इसकी अकादमिक उपयोगिता भी स्पष्ट होती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, रेंडरिंग पाइपलाइन को दृश्य से पिक्सेल तक की संगठित प्रक्रिया के रूप में समझना। पुस्तक का केंद्रीय ढांचा रेंडरिंग पाइपलाइन है, यानी किसी त्रिआयामी दृश्य को स्क्रीन के पिक्सेलों में बदलने वाली चरणबद्ध प्रक्रिया। मॉडल के स्थानीय निर्देशांक पहले विश्व और कैमरा निर्देशांकों में बदले जाते हैं, फिर प्रोजेक्शन के माध्यम से उन्हें द्विआयामी स्क्रीन पर रखा जाता है। इस क्रम को समझना जरूरी है, क्योंकि कैमरा की स्थिति, दृश्य क्षेत्र और परिप्रेक्ष्य में छोटा परिवर्तन भी अंतिम छवि को बदल देता है। पुस्तक क्लिपिंग, प्रिमिटिव असेंबली, त्रिकोणीकरण और रेस्टराइजेशन जैसे चरणों को इसी व्यापक संदर्भ में रखती है। क्लिपिंग ऐसे भाग हटाती है जो दृश्य आयतन के बाहर है, जबकि रेस्टराइजेशन त्रिकोणों से प्रभावित पिक्सल पहचानता है। यह विभाजन केवल सैद्धांतिक नहीं है। हर चरण में काम घटाने से फ्रेम समय बचता है और गलत क्रम या गलत निर्देशांक स्थान से विकृति, झिलमिलाहट तथा गहराई संबंधी त्रुटियां पैदा हो सकती है। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि रियल टाइम प्रणाली में पाइपलाइन को एक संयुक्त उत्पादन प्रक्रिया की तरह देखना चाहिए। किसी एक चरण में अत्यधिक जटिलता, चाहे वह अधिक ज्यामिति हो या महंगा पिक्सल शेडर, पूरे फ्रेम की गति सीमित कर सकती है। इसीलिए इसका अध्ययन दृश्य गुणवत्ता और निष्पादन लागत के बीच निर्णय लेने का आधार बनता है। दूसरा, ज्यामिति, रूपांतरण और स्थानिक संरचनाओं से दृश्य की गणनात्मक लागत नियंत्रित करना। रियल टाइम रेंडरिंग में दृश्य की ज्यामिति केवल वस्तु का आकार नहीं, बल्कि गणना की लागत का स्रोत भी है। पुस्तक बहुभुज जाल, बिंदु आधारित निरूपण, वक्रों और सतहों जैसे ज्यामितीय विकल्पों की चर्चा करती है। व्यावहारिक रेंडरिंग में त्रिकोण विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि वे सदैव समतल होते हैं और हार्डवेयर पाइपलाइन उन्हें कुशलता से संसाधित करती है। फिर भी अधिक त्रिकोण अपने आप बेहतर परिणाम नहीं देते। बहुत सूक्ष्म जाल दूर की वस्तुओं पर व्यर्थ काम कर सकता है, जबकि कम विवरण वाला मॉडल निकट कैमरे पर कोणीय दिख सकता है। इसलिए स्तरानुसार विवरण और उपयुक्त प्रतिनिधित्व आवश्यक बनते हैं। रूपांतरणों के माध्यम से वस्तु को घुमाना, खिसकाना और आकार बदलना भी मूलभूत विषय है। मैट्रिक्स आधारित रूपांतरण अनेक बिंदुओं पर एक ही परिवर्तन लागू करने का सुव्यवस्थित तरीका देते हैं। पुस्तक स्थानिक अनुकूलन संरचनाओं के महत्व को भी जोड़ती है। इनका लक्ष्य यह तय करना है कि किस वस्तु, किस त्रिकोण या किस क्षेत्र पर वास्तव में गणना करनी चाहिए। दृश्यता जांच, टकराव संबंधी प्रश्न और किरण आधारित खोजों में ऐसी संरचनाएं अनावश्यक परीक्षण कम कर सकती है। इस तरह ज्यामिति का अध्याय कलात्मक मॉडलिंग और एल्गोरिथमिक दक्षता के बीच वास्तविक संबंध दिखाता है। तीसरा, टेक्सचर, शेडिंग और रंग प्रबंधन से सीमित ज्यामिति में समृद्ध सतह बनाना। पुस्तक बताती है कि सतह का दृश्य प्रभाव केवल उसके बहुभुजों से तय नहीं होता। टेक्सचर मैपिंग किसी मॉडल पर रंग, सूक्ष्म पैटर्न, सामग्री के संकेत और अतिरिक्त विवरण लगाने की विधि है। इससे कम ज्यामिति वाली वस्तु भी ईंट, लकड़ी, धातु या कपड़े जैसी जटिल लग सकती है, लेकिन टेक्सचर का उपयोग सीधा नहीं है। वस्तु से टेक्सचर तक निर्देशांकों का सही मानचित्रण चाहिए, अन्यथा सीमों, खिंचाव और असंगत पैटर्न जैसी समस्याएं आती है। कैमरे से दूरी बदलने पर एक स्क्रीन पिक्सल में टेक्सचर के कई नमूने आ सकते हैं या बहुत कम नमूने पड़ सकते हैं। इसलिए फिल्टरिंग और अलग अलग रिजोल्यूशन वाले टेक्सचर स्तर छवि को स्थिर रखने में मदद करते हैं। शेडिंग के माध्यम से प्रकाश और सतह की दिशा का संबंध पिक्सलों तक पहुंचता है। पुस्तक रंग, प्रकाश और सामग्री गुणों को रेंडरिंग के पृथक सजावटी हिस्से की तरह नहीं, बल्कि धारणा और विश्वसनीयता के आधार के रूप में रखती है। सामान्य वेक्टर और प्रकाश दिशा से बने अंतर सतह को उभरा हुआ दिखा सकते हैं, भले ही उसकी वास्तविक ज्यामिति सरल हो। पारदर्शिता और कटआउट टेक्सचर भी अलग चुनौतियां लाते हैं, क्योंकि परतों का मिश्रण और दृश्यता क्रम परिणाम बदलते हैं। मल्टी सैम्पलिंग आधारित अल्फा टू कवरेज जैसी तकनीकें घास या पत्तियों के किनारों को अपेक्षाकृत सहज दिखाने में उपयोगी हो सकती है। मुख्य सीख यह है कि सतह की गुणवत्ता नमूनाकरण, प्रकाश मॉडल और हार्डवेयर बजट के संतुलन से बनती है। चौथा, दृश्यता और छाया में सही उत्तर पाने की कीमत को पहचानना। किस वस्तु का कौन सा भाग कैमरे को दिखेगा, यह रेंडरिंग की बुनियादी समस्या है। यदि पीछे की सतह आगे की सतह पर खिंच जाए तो त्रिआयामी भ्रम तुरंत टूट जाता है। पुस्तक दृश्यता के लिए गहराई संबंधी परीक्षणों और अन्य तरीकों का संदर्भ देती है, जिनसे हर पिक्सल पर निकटतम उपयुक्त सतह चुनी जाती है। यह समस्या छाया में और जटिल होती है, क्योंकि अब प्रश्न कैमरे से नहीं प्रकाश स्रोत से पूछा जाता है। किसी बिंदु तक प्रकाश पहुंच रहा है या बीच में कोई वस्तु उसे रोक रही है, इसी से छाया बनती है। छाया दृश्य में वस्तुओं के स्थानिक संबंध स्पष्ट करती है, लेकिन उसकी लागत और कलाकृतियां दोनों महत्वपूर्ण है। सीमित रिजोल्यूशन, पक्षपाती गहराई मान और प्रकाश तथा कैमरे की गति से किनारों में अस्थिरता दिख सकती है। पुस्तक का महत्व यहां किसी एक छाया तकनीक को अंतिम समाधान बताने में नहीं, बल्कि समस्या की संरचना समझाने में है। कुछ तरीके तेज होते हैं, लेकिन सीमित प्रकार के प्रकाश या दृश्य में बेहतर चलते हैं। कुछ अधिक सामान्य होते हैं, पर स्मृति, बैंडविड्थ या गणना अधिक मांगते हैं। पारदर्शी वस्तुएं भी दृश्यता की सरल धारणा को चुनौती देती है, क्योंकि उनके पीछे की सतह आंशिक रूप से दिखनी चाहिए। ऐसे मामलों में क्रम, मिश्रण और अनुमानित विधियों पर सोच जरूरी है। पाठक सीखता है कि छाया और दृश्यता प्रकाश के अतिरिक्त प्रभाव नहीं, बल्कि रेंडरिंग की सही संरचना और विश्वसनीय गहराई बोध के अनिवार्य हिस्से हैं। अंत में, वैश्विक प्रकाश, रे ट्रेसिंग और रेडियोसिटी को रियल टाइम सीमाओं के भीतर रखना। स्थानीय प्रकाश मॉडल प्रायः किसी सतह पर सीधे पड़ने वाले प्रकाश का अनुमान लगाते हैं, लेकिन वास्तविक वातावरण में प्रकाश दीवारों, फर्श और वस्तुओं से बार बार परावर्तित होता है। इसी व्यापक ऊर्जा विनिमय को वैश्विक प्रकाश कहा जाता है। पुस्तक रे ट्रेसिंग और रेडियोसिटी जैसे विषयों के माध्यम से दिखाती है कि प्रतिबिंब, परोक्ष प्रकाश, रंग का आपसी प्रभाव और नरम छायाएं क्यों कठिन हैं। रे ट्रेसिंग में किरणों के जरिए दृश्य में प्रतिच्छेदन खोजे जाते हैं, इसलिए यह दृश्यता, प्रतिबिंब और अपवर्तन के प्रश्नों को एकीकृत ढंग से संभाल सकता है। किंतु जटिल दृश्य में बड़ी संख्या में किरण परीक्षण महंगे हो सकते हैं। रेडियोसिटी सतहों के बीच प्रकाश ऊर्जा के आदान प्रदान पर केंद्रित है और विशेष रूप से फैलाव वाले परावर्तन की समझ देता है, पर इसका समाधान भी गणनात्मक रूप से भारी हो सकता है। रियल टाइम संदर्भ में इन विचारों का मूल्य इसलिए है कि वे यह स्पष्ट करते हैं कि सरल प्रत्यक्ष प्रकाश किन स्थितियों में अपर्याप्त होगा। पुस्तक तकनीक को केवल उसके आदर्श दृश्य परिणाम से नहीं आंकती, वह पूर्व गणना, अनुमान, सीमित नमूनाकरण और हार्डवेयर क्षमता जैसे व्यावहारिक समझौते की जरूरत रेखांकित करती है। परिणामतः पाठक किसी प्रभाव को देखते समय उसके पीछे छिपे प्रकाश, परिवहन प्रश्न और उसे रियल टाइम में साधने की लागत दोनों पर विचार करना सीखता है। निष्कर्ष में, रियल टाइम रेंडरिंग थर्ड एडिशन उन पाठकों के लिए सबसे उपयोगी है जो इंटरैक्टिव त्रिआयामिक ग्राफिक्स को केवल एपीआई कॉल या इंजन सेटिंग्स के रूप में नहीं, बल्कि परस्पर जुड़ी गणितीय और हार्डवेयर प्रक्रियाओं के रूप में समझना चाहते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स के विद्यार्थी, गेम इंजन या रेंडरिंग प्रोग्रामर, तकनीकी कलाकार, विजुअलाइजेशन डेवलपर और शोध की तैयारी करने वाले पाठक इससे विशेष लाभ पा सकते हैं। शुरुआती पाठक को वेक्टर, मैट्रिक्स और बुनियादी प्रोग्रामिंग का परिचय होने पर इसकी सामग्री अधिक सुगम लगेगी। पुस्तक पढ़ने का व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक फ्रेम दर घटने, छाया में त्रुटि, टेक्सचर की झिलमिलाहट, गलत प्रोजेक्शन या पारदर्शिता की समस्या को अलग अलग लक्षणों की बजाय प्रणालीगत कारणों से जोड़ पाता है। इसका बौद्धिक लाभ यह है कि गुणवत्ता और गति के बीच समझौते को स्पष्ट भाषा और तकनीकी आधार में देखा जा सकता है। समान पुस्तकों की तुलना में इसकी विशिष्टता विषयों की चौड़ाई और उन्हें रियल टाइम बाधाओं के संदर्भ में जोड़ने में है। यह केवल एक ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग मार्गदर्शिका नहीं है, न केवल प्रकाश या ज्यामिति पर केंद्रित सिद्धांत ग्रंथ। यह पाइपलाइन दृश्यता, सामग्री, प्रकाश और अनुकूलन को एक ही रेंडरिंग निर्णय प्रक्रिया के हिस्से के रूप में प्रस्तुत करती है। तीसरा संस्करण ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, हालांकि वर्तमान हार्डवेयर और तकनीकों के लिए पाठक को नई सामग्री भी साथ देखनी चाहिए। फिर भी मूल सिद्धांत, शब्दावली और समस्या सुलझाने की दृष्टि के लिए यह एक मजबूत आधार बना रहता है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं, टोमास आकनिन मॉलर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।